countrywide.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए वन क्षेत्र में वृद्धि के जरिए पर्यावरण संरक्षण में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार संजय झा।
भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में एफएओ कहा जाता है, ने अपनी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 जारी की है। एफओए की ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए नौवां स्थान हासिल किया है। यही नहीं, भारत वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के लिहाज से चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर बना हुआ है। मतलब हमारे देश में हरियाली बढ़ रही है और यह हम सब के लिए गर्व की बात है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही जी शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर पाणिग्रही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम को लेकर क्या कहा।
एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं।
आपसे जानना चाहेंगे इस उपलब्धि के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? क्या यह नीतिगत प्रयासों की सफलता है या इसमें नागरिकों और स्थानीय समुदायों की भूमिका ज्यादा अहम रही है?
आप जैसे बोला, ये बहुत गर्व और खुशी का बात है। लास्ट ईयर हम 10वीं पोजीशन में थे, अभी 9वीं पोजीशन में आ गए और हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, हरियाली बढ़ रहा है। और अभी प्रधानमंत्री का जो नारा है, एक पेड़ माँ का नाम, इसका मतलब यही है, ये एक जन आंदोलन है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना माँ का नाम पे, माँ सबसे ज्यादा प्यारा होती है तो इसीलिए माँ की स्मृति में कम से कम एक पेड़ लगाइए, ज्यादा लगाने से और भी बहुत अच्छा है। और इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, अगर हर एक व्यक्ति बारिश में और हर एक महीना और जब जब संभव हो रहा है अगर पेड़ लगाते जाएंगे, कम से कम एक ही पेड़ लगाएंगे तो हरियाली तो बढ़ेगा ही। ये जो प्रधानमंत्री की आह्वान है, ये काफी अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया हुआ है और नीतिगत निष्पत्ति भी बहुत अच्छा रहा है। तो इसका जो सफलता का पीछे बहुत सारे रीजन्स है, इसको हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है और इकोसिस्टम का बैलेंस जैसे बरकरार रहे, इसी को सामने रखते हुए अधिनियम बनाया गया है और एफोरेस्टेशन पॉलिसी बहुत देश का स्ट्रांग है। आपको अगर याद होगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 बहुत प्रभावित ढंग से नीति को प्रभाव किया हुआ है। देश का स्तर में, राज्य का स्तर में, यूनियन टेरिटरी में इसका हरियाली कार्यक्रम जितना सारे है और पर्टिकुलरली बारिश का मौसम में बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम लिया जा रहा है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो है कॉम्प्रेहेंसिव मेजर्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर जो 2018 मसिया से लागू है और ये फॉरेस्ट का रेजिलेंस को इम्प्रूव किया हुआ है। और बहुत सारे जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी गांव का स्तर में, पंचायत स्तर में फॉर्मुलेट हुआ है और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो पब्लिक और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में काफी सफल का शिखर पर पहुंचा हुआ है। तो हमारा नीति भी बहुत ताकतवर है और लोगों का योगदान भी उसी से कोई कम नहीं रहा है।
बिल्कुल डॉक्टर पाणिग्रही, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या यह बढ़ोतरी केवल संख्यात्मक रूप से है, यानी पेड़ों की गिनती बढ़ी है, या फिर वनों की गुणवत्ता जैव विविधता, घनत्व और प्राकृतिक पारिस्थितिकी में भी सुधार आया है।
हर एक देश एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं फॉरेस्ट में ग्रीनरी का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन का साथ भी जड़ित है। आप अगर देखेंगे तो जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इतना मात्रा में बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इंडिया अपना NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में एक ग्लोबल कमिटमेंट रखा है कि ये इंडिया 5 मिलियन मेगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांटिंग ट्री रिड्यूस करेगा। तो ये सिंक क्रिएट करता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारा देश का ऐसे संस्थान है जिसका काम है फॉरेस्ट में कवर को हर एक साल मॉनिटरिंग करना, मेजर करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिस को फॉलो करके और वो डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से पब्लिक करना। इसलिए इसका जो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, सालों भर इसका प्रक्रिया चलता रहता है और सैटेलाइट इमेजरी इंडिया स्पेस साइंस में काफी प्रोग्रेस किया है। हम लोग का सैटेलाइट थ्रू जो फोटोग्राफ लिया जाता है इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जाता है, तो कहाँ कितना मात्रा में हरियाली का सांद्रता है यानी कि इंटेंसिटी है और कहाँ छोटा मोटा घास है, कहाँ हरे भरा जंगल है, इसमें उसका कलर रेड आता है और जब सैटेलाइट इमेजरी को इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसको साइंटिफिक लेबोरेटरी में मेजर किया जाता है और इसका बाद जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसको ड्राफ्ट रिपोर्ट बोला जाता है और उसका बाद उसका फील्ड वेरिफिकेशन होता है और ऐसा भ्रमित में कोई गलती तो न हो जाए। तो इसमें काफी सारे वैज्ञानिक फॉरेस्ट का बहुत सारे लोकेशन को रिजर्व फॉरेस्ट, कोर एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सबको चप्पे चप्पे ट्रैवल करके वेरीफाई करते हैं, मेजर करते हैं।
हमने देखा है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर भारत में कई वनीकरण अभियान चल रहे हैं, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, ग्रीन इंडिया मिशन आदि, आपने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की है। तो आपको लगता है कि इन अभियानों से, चूंकि ये मोदी जी खुद इसको लीड कर रहे हैं, तो इसका जमीनी असर कितना दिखाई देता है? क्या इनसे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर लोगों की भागीदारी बढ़ी है?
बिल्कुल, आपको मैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 बारे में बताया हूँ, इसका बाद एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम भी 2014 से आया था और इसका बाद जो ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 8 मिशन्स हुए और इसमें ग्रीन इंडिया मिशन GIM जिसको बोलते हैं उसको भी आप मेंशन किया। इसका उद्देश्य है लाइफ फूड एनहांसमेंट बाय इंक्रीजिंग द इनकम, अपना रोजगार का वृद्धि में लोगों को अपना जीविका के लिए समर्थन करवाना और इकोसिस्टम को बूस्ट करना, इकोसिस्टम सर्विस को बूस्ट करना, कार्बन स्टोरेज और कार्बन स्टॉक को इम्प्रूव करना, इसमें जन भागीदारी है और इसको प्राइम मिनिस्टर जी का आह्वान को सारा देश में अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और उसका नतीजा दिखाई दिया, जो इंडिया का पोजीशन ग्लोबली 9th पोजीशन को आया है टोटल फॉरेस्ट कवर में, और इसके लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है।
डॉक्टर पानीगिरी, अब जब भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है तो ये उपलब्धि बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती है और इसके अभी भी 9वें स्थान पे है। एक तो इस पोजीशन को बरकरार रखना और इसके ऊपर जाना, तो आपके विचार से आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत को किन प्राथमिक क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक वनों का पुनरुद्धार, शहरी हरियाली और सामुदायिक वनीकरण पर विशेष देना चाहिए?
अभी तो भारत 9वीं पोजीशन में पहुंच गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा देश का उम्मीद है 2047 में जब देश 100 साल का हो जाएगा तब हमारा इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहिए। तो इसी को हासिल करने के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा, जो हमको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, इसी में पर्यावरण को काफी उसका इम्पैक्ट महसूस होगी और इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट पर भी प्रेशर आने वाला है। तो ये प्रेशर को हम सही से मुकाबला करना और उसका भरपाई करने के लिए सही कार्यक्रम अपनाना होगा। जैसे इंदौर 8 बार स्वच्छ शहर का सम्मान संपूर्ण देश में हासिल किया है, तो अभी इंदौर शहर का उम्मीद है कि ये कैसे विश्व का एक सस्टेनेबल सिटी बन पाएगा, और इसके लिए एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। तो इसमें शहरी वनीकरण को गुरुत्व दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट का पॉकेट क्रिएट किया जाएगा, साइकिल ट्रैक किया जाएगा, और इसको नेट जीरो सिटी जैसे इसका प्लान बनाया जा रहा है, ताकि 2035 तक ये एक पृथ्वी का सस्टेनेबल शहर बन सके और टोटल जीरो वेस्ट रहेगा और 100% सर्कुलर रहेगा।
आपने इंदौर की चर्चा की, आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर और दुनिया के विकसित देशों की सबसे ऊंची जो कतार है उसमें शामिल होंगे। भारत ने एक और बहुत ही पूरे विश्व समुदाय के लिए अपना एक टारगेट, अपना एक एम दिया है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए काम कर रहा है। तो आप अगर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी इस दिशा में कैसे मदद कर सकती है, क्या हमें उससे पहले भी हम ये जो चाह रहे हैं नेट जीरो का वो पूरा हो सकता है, क्या हम अपने जलवायु दायित्वों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को जोड़कर देख सकते हैं?
कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दो रास्ताएं हैं। एक रास्ता है आपको एट सोर्स, जहां जानवाहन का जो प्रदूषण है, जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है और जहां इंडस्ट्री से आसमान को फेंका जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसी को जितना हो सके कंट्रोल किया जाए थ्रू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी अपना के। दूसरा तरीका है हमको कार्बन सिंक क्रिएट करना है, उसमें हमको फॉरेस्ट बढ़ाना होगा, ग्रीन कवर बढ़ाना होगा और हमारा कार्बन स्टॉक को बढ़ाना होगा। आसमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड बहु मात्रा में बढ़ते जा रहा है, पेड़ पौधे उसको अपना सांस जैसे ग्रहण करके उसको विशोधन करके उसमें जो अंगार और जो कार्बन है वो अपना बॉडी में बिल्ड कर लेते हैं, और ये जो सिंक और सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस है ये भी जलवायु परिवर्तन को समाधान दिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। तो वनीकरण, फॉरेस्ट एनहांसमेंट जो हमारा टारगेट रहा है 2070 तक नेट जीरो इंडिया हो जाएगा, तो इसमें हमारा द्रुत वनीकरण और फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, नॉट ओनली डेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बट ऑल्सो गांव में, शहर में हमको छोटे बड़े अर्बन एंड रूरल फॉरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
बिल्कुल डॉक्टर पानीग्रही, जब इस तरह के आंकड़े आते हैं, जब विश्व के स्तर पर हमारी अचीवमेंट होती है, तो लोगों में कितना प्रोत्साहन मिलता है कि हमें और भी अपना जो हरियाली है, जो इस तरह के जो चीजें हमें और बढ़ाना चाहिए, इस पे हमें और काम करना चाहिए।
जब देश को कोई अंतर्जातिक स्तर में सम्मान मिलता है तो उसका गर्व हर एक नागरिक महसूस करता है, और ये जो गर्व है ये सिर्फ अपना आत्मसम्मान का बढ़ावा नहीं है, ये एक अपना कर्तव्य और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी चेताता है और बताता है। और ये जो भारत का सम्मान, नवीं पोजीशन में सारा विश्व में भारत अपना परिचय बनाया हरियाली बढ़ाने में, और इसका भागीदारी देश का प्रत्येक नागरिक महसूस करेंगे, गर्व अनुभव करेंगे और अपना कर्तव्यों को समझेंगे और इसको अपना प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करेंगे, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन सफल होगा और देश खुद को हरियाली और अच्छा पर्यावरण और जीवन शैली के लिए एक वातावरण सृष्टि करने का साथ पृथ्वी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भारत की यह उपलब्धि सचमुच हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लेकिन साथ ही हम सब की जिम्मेवारी भी है कि इस हरियाली को बनाए रखें। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पानीग्रही, आपका बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वन क्षेत्र में वृद्धि के जरिए पर्यावरण संरक्षण में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पणिग्रही। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड